नमास्ते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो दासांग मई जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। प्रवचन निर्देश का ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। आपने प्रवचन निर्देश का के अंदर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके और ज्ञान की वृद्धि की है। प्रकरण चल रहा है ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली, क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ अध्ययन करते हैं, चाहे लौकिक ग्रंथों का अथवा धार्मिक ग्रंथों का। स्वाध्याय एक ऐसी चीज है, स्व प्लस अध्याय, माने जिसके द्वारा अपनी आत्मा का अध्ययन हो, अपने लिए हित की बात जिसके द्वारा जानी जाए, तो वह स्व प्लस अध्याय माने अपनी आत्मा का अध्ययन, अपने हित के लिए अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है स्वाध्याय। लौकिक अध्ययन तो सभी लोग करते हैं, धार्मिक अध्ययन में रुचि बहुत ही बिरले लोगों की होती है, तो उसके अंदर इसलिए क्रम बताया गया कि आप बिरले लोगों में से, दुर्लभ लोगों में से हैं, तो आपका जो ज्ञान हो समीचीन ज्ञान मोक्ष मार्ग के लिए प्रवृत्त कराने वाला ज्ञान हो, उसके लिए अनेक प्रकार के ग्रंथों का आधार लेकर पूज्य ज्ञानमती माता जी ने इस ग्रंथ के अंदर वर्णन किया है। कल आपने जाना था कि कठोर वचन भी जो गुरुओं के होते हैं, वे चूंकि शिष्य के भक्त के हित के लिए होते हैं, तो वह भी अपने लिए बहुत ही कार्यकारी होते हैं, मन को प्रफुल्लित करने वाले होते हैं। अब आगे बताते हैं शिष्य कैसे हों। पेज नंबर खोलिएगा 173, 173। शिष्य कैसे हों उसके लिए बताया, शिष्य भी दुराग्रह से रहित हो तथा श्रवण धारण आदि बुद्धि के विभव से युक्त हो, इत्यादि गुणों से युक्त शिष्य ही शास्य माने उपदेश के लिए पात्र होता है। वरना अगर गुरु का उपदेश मिला या गुरु ने अध्ययन कराया, उसका लक्षण श्री अमृतचंद चंद्र सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर कहा है, अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुरितायतनान्यमुनि व परिवर्ज्य, अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुरितायतनान्यमुनि परिवर्ज्य, जिन धर्म देशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्ध दिया। शुद्ध दिया माने शुद्ध बुद्धि वाले, अच्छी बुद्धि वाले, तो उनके लिए क्या कहा, अनिष्ट और दुस्तर पाप के स्थान स्वरूप जो मध्य मास मधु हैं। जैन शासन के अंदर सबसे पहले मध्य मास मधु के त्याग की बात कही गई, और पांच चिदंबर फल, तो पांच और तीन मिलकर के आठ हो जाते हैं। पंच चिदंबर फल बड़ पीपल पाकर उमर कठुमर, ये पांच चीजें वर्तमान में खाने में भी नहीं आती हैं, इनकी उपलब्धता भी कम ही होती है, और इन सब के अंदर आठों चीजों में जीवों का घात होता है और व्यक्ति ना समझ करके भी समझो मांसाहार का सेवन कर लेता है, क्योंकि जिस चीज के खाने में जीव हिंसा हो तो वह मांसाहार के समान ही है। तो 8 प्रकार की ऐसी चीजें हैं, इन 8ों का त्याग करके शुद्ध दिया माने शुद्ध बुद्धि वाले अच्छी बुद्धि वाले जन ही जिन धर्म की देशना के पात्र होते हैं। वरना क्या है कि जो मांसाहार कर रहे हैं जिन धर्म की देशना उनके अंदर नहीं टिक पाती। बड़े बिरले लोग होते हैं कि जब ऐसी चीजों का सेवन करते हुए भी गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वे इन चीजों का सेवन बंद कर देते हैं, संकल्प कर लेते हैं, नियम कर लेते हैं कि हम नहीं खाएंगे। जब बच्चा 40 दिन का होता है तब माँ उसे मंदिर लेकर के जाती है। जैन शासन की परंपरा है कि 40 दिन तक प्रसूति गृह से माँ बच्चे को लेके कहीं बाहर नहीं जाती, और जब सबसे पहले निकलती है तो मंदिर की ओर उसे ले जाया जाता है। मंदिर में जाकर उसके कान में कोई ना कोई बड़े लोग और अगर गुरु होते हैं तो उनके द्वारा उस बच्चे के कान में नमोकार मंत्र सुनवाया जाता है। ये जीवन जीने की एक प्रक्रिया बता रही कि जब से उसने आंख खोली तब से सबसे पहले उसको ये पाठ पढ़ाया जाता है कि आपको मद्य मांस मधु का त्याग है, 5 उदंबर फलों का त्याग है। बच्चा कुछ नहीं समझता लेकिन उसकी माँ और उसके पिता पर जिम्मेदारी डाली जाती है कि 8 साल तक बच्चे को समझ होने तक, आज तो बच्चे जल्दी ही समझदार हो जाते हैं क्योंकि बहुत जल्दी स्कूल भेज दिया जाता है, लेकिन माता पिता पर जिम्मेदारी डाली जाती है कि आप इन 8 अभक्ष चीजों का बच्चे को सेवन नहीं कराएंगे। और उसको समझ आते ही फिर उसे बताएंगे कि आप किसी का टिफिन शेयर नहीं करेंगे, कोई मांसाहार की वस्तु का सेवन नहीं करेंगे, कहीं किसी में सहेद है तो उस चीज को नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, मांस से बनी हुई चीजें नहीं खाएंगे, जो जैसे केक वगैरह हैं जिनके अंदर अंडा पड़ता है उसको नहीं खाएंगे। इन सब चीजों की बुद्धि प्रारंभ से ही दी जाती है, संस्कार डाले जाते हैं और प्रायः माता पिता फिर अपने बच्चों को वैसे संस्कारों में ढालते हैं। कुछ कुछ बच्चे आज ऐसा विकृत वातावरण आ गया है कि कोई कोई बच्चे इस प्रकार से हो जाते हैं तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने से, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ने से, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने से उनकी बुद्धि के अंदर ये समझ आता है कि इन चीजों के खाने से या एक खाने से या ऐसी चीजें खाने से, मांसाहारी वस्तुएं खाने से शक्ति बढ़ती है और फिर बहुत मुश्किल में ही वो छोड़ पाते हैं। तो अगर उन्हें प्रारंभ से संस्कार दिए जाएंगे, जिस दिन से स्कूल जाना शुरू किया है या आपने उनका टिफिन बनाना शुरू किया है तो उसी दिन से उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि आज जमाना बहुत ही ज्यादा भौतिक जमाना आ गया है, मोस्ट मॉडर्न युग आ गया है, जब लोग इन चीजों से परे रहते हैं। आज पैकिंग का सिस्टम है, सुंदर पैकिंग होना चाहिए, उसके अंदर चाहे जहरी भरा हो। तो पैकिंग के जमाने में और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जब आप उनके अंदर की चीजों का पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या है, जो भी प्रोडक्ट हो, तो आपको पता चलेगा। फिर कितने ही बच्चे, चॉकलेट है इसके अंदर क्या पड़ती है बता दिया जाता है, कैडबरीज की चॉकलेट है इसके अंदर क्या है, इन चीजों को बच्चे नहीं जान पाते और उसके आदी हो जाते हैं। उसके बाद जब जानते हैं तो उसको छोड़ने का प्रयत्न करते हैं या नहीं छोड़ पाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार से अपनी लाइफ स्टाइल में मंजूर नहीं होता कि हम उसका त्याग करें। तो कुल मिला करके बताया कि जिनके अंदर इन 8 वस्तुएं प्राइमरी स्टेज पर त्याग करने की शक्ति है, त्याग करने की योग्यता है, त्याग कर देते हैं तभी जा करके जिन धर्म देशना या पात्रम होते, वही जिन धर्म की देशना के पात्र होते हैं वही शुद्ध दिया वही समीचीन बुद्धि वाले कहे गए हैं। वरना आप बड़े बड़े राजाओं की कथा भी सुनते होंगे कि मांसाहारी हुआ करते थे। एक राजा के यहाँ पंडित विद्वान रोज आना शास्त्र पढ़ने जाते थे, वे मांसाहारी राजा थे। तो जो पंडित उनके यहाँ शास्त्र पढ़ने जाते थे, जानते थे कि राजा के अनुकूल ही हमें बोलना है। एक जगह मांसाहार का प्रकरण आया कि मांसाहार करने वाला नरक में जाता है। उस जगह एक स्लिप लगा दी और उसको नहीं पढ़ा। अब क्या हुआ, वे बाहर चले गए कहीं। तब उसके स्थान पर राजा ने कहा कि चलो इसके बच्चे को बुला लेते हैं। तो विद्वान के बेटे को बुलाया गया कि अब आप शास्त्र पढ़िए। शास्त्र उसने पढ़ा। पहले जमाना था एक कि राजाओं के यहाँ भी विद्वान को स्थान होता था और वे राजाओं को भी सजग सावधान रखते थे, अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते थे। घरों में भी, बड़े बड़े घरों में भी पहले विद्वान पंडित पढ़ाने के लिए हुआ करते थे। उसके बाद फिर परंपरा घटी तो समाज में पंडित विद्वान बच्चों को पढ़ाते थे, महिलाओं को पढ़ाते थे, संस्कारित करते थे। आज वो परंपराएं समाप्त हो रही हैं। इसलिए आज रात्रि पाठशाला आदि खोलने की परंपरा या ग्रीष्मकालीन में, शीतकालीन में शिविरों को लगाने की परंपराएं इसीलिए चालू की हैं हमारे कुछ अच्छे लोगों ने, कि हमारे संस्कार जो समाप्त होते जा रहे हैं उनके अंदर फिर से संस्कार प्रवाहित हो। तो उस राजा के बेटे, राजा के यहाँ जब विद्वान का बेटा पढ़ने के लिए गया तो उसने एक स्लिप बुकमार्क देखा। तो उसने सोचा यही मेरे पिताजी ने छोड़ा होगा। अब वो पढ़ता है थोड़ा प्रकरण पढ़ने के बाद और फिर कहता है कि जो एक टुकड़ा भी मांस का खाता है वो रौरो नाम के नरक में जाता है और वहां तमाम दुखों को भोगता है। एकदम उस चीज को सुनते ही राजा, चूंकि मांसाहारी था, उसको मंजूर ही नहीं हुआ। विद्वान का बेटा कहता है राजन जो इसमें लिखा था मैंने पढ़ दिया, लेकिन राजा कहता है कि आपके पिताजी ने आज तक नहीं पढ़ा, तू दंड का पात्र है। और तुरंत राजा उसको मृत्यु दंड सुना देता है कि 2 दिन बाद तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। 2-3 दिन के अंदर जो भी तेरी इच्छाएं हैं पूर्ण कर ले और तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब वो बड़ा परेशान हुआ। दूसरे दिन जब उसके पिता विद्वान पंडित जी वापिस आए, बाहर गए हुए थे, तो जब घर में जाना कि कोहराम मचा हुआ है, मेरी बेटी को तो मृत्यु दंड मिला है। क्यों? तो उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे जहां आपने स्लिप लगाया था हमने उसी को पढ़ दिया। बोले बेवकूफ कहीं का, तुझे पता ही नहीं है जो राजा मांसाहारी है और उसको कभी भी ये बात मंजूर नहीं होगी और तूने उसको पढ़ दिया। मैं इतने दिन से उसको टाल रहा था। मैंने वहां पर स्लिप इसलिए रखी थी कि भूल से भी कभी हम उसको पढ़ ना दें। तो राजा ने कहा अच्छा अब क्या करें। तो विद्वान सोचता है कि मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं। अगले दिन राजा की सभा में जाता है, अपने बेटे को लेकर के जाता है। राजन बड़ा उद्दंड निकला मेरा बेटा और मैं तो आपसे माफी मांगने आया हूं, इसने गलत अर्थ कर दिया, इसे सही अर्थ करना नहीं आया। राजन इसने पढ़ा तो जरूर उसको जो लिखा था लेकिन ये अर्थ नहीं कर पाया। इसमें लिखा है कि मांस का एक टुकड़ा खाने वाला भी नरक में जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो डल्ले के डल्ले मांस खाता है वो नरक में नहीं जाता है। राजा खुश हो गए, बोले अच्छा चलो इसको ठीक से अर्थ करना समझा देना, तुम्हारे कहने से मैं इसका मृत्यु दंड माफ कर देता हूँ। अब देखो ये है भले कहानी लेकिन है सच्ची कहानी। उसने मायाचारी करके अपने बेटे को तो बचा लिया लेकिन क्या अपनी आत्मा को बचा पाया, कि जिसने इस बात को कह दिया कि डल्ले के डल्ले मांस खाने वाला नरक में नहीं जाता वो तो स्वर्ग में जाता है। राजा को तो खुश कर दिया लेकिन उसने अपनी आत्मा को नरक में डाल दिया। उसी दिन से उसको नरक आयु का बंद हो गया। तो महानुभाव इस प्रकार से कोई भी जिन देशना का पात्र नहीं होता। अर्थ करने का मतलब यह है कि उसका समीचीन अर्थ किया जाए, ऐसे मनमाना अर्थ नहीं किया जाए या सामने वाले को केवल संतुष्ट करने के लिए गलत अर्थ ना किया जाए। तो ऐसे लोगों को आचार्य अमृत चंद्र सूरी कहते हैं, उन्हें तो देशनाक का पात्र ही नहीं बताया कि वे क्या करेंगे जब वो दूसरे को ही गलत उपदेश दे रहे हैं। तो ये भला जिन धर्म की देशना के पात्र कैसे हो सकते हैं जब स्वयं में क्रम क्रम से मांसाहारी चीजों का, अभक्ष वस्तुओं के सेवन का त्याग करने में सक्षम होंगे, तभी जिन धर्म की देशना के पात्र होते हैं, जिन धर्म की देशना का पात्र बनना मतलब आगे मोक्ष मार्ग पर चलने के योग्य होते हैं। केवल सामने वाले के समान उसकी इच्छा के अनुरूप बात नहीं कहना, उसके लिए जो हित में है वो बात कहना। श्रोता की इच्छा के अनुरूप नहीं, कोई डॉक्टर मरीज की इच्छा के अनुरूप दवाई नहीं देता, उसके मर्ज के अनुरूप दवाई देता है। गुरु कभी शिष्य को खुश करने के लिए प्रतिकूल आचरण करने का उपदेश नहीं देंगे, इच्छा के अनुरूप नहीं योग्यता को वृद्धिंगत करने का उपदेश देंगे। वही असली गुरु है, वही सच्चे गुरु है। तो महानुभाव, आपको पेज नंबर 173 पर ये आचार्य अमृत चंद्र सूरी, जो बड़े बड़े ग्रंथों के टीकाकार हुए, जिन्होंने समय सार पर आत्मख्याति टीका लिखी, प्रवचन सार ग्रंथ पर टीका लिखी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ लिखा, तो ऐसे आचार्य के कथन है। और उसके साथ में आगे कहते हैं, यावत् जीवमिति त्यक्त्वा महापापानि शुद्धधी जिन धर्म श्रुतेर योग्यः स्यात् कृतोपनयो द्विजः। सागार धर्मामृत नाम का ग्रंथ है जो पंडित आशाधर जी ने लिखा। वे पंडित जरूर थे लेकिन बड़े विद्वान थे। घर में रह करके भी उन्होंने संस्कृत टीकाएं लिखी और आर्ष परंपरा के अनुसार भी उन्होंने सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत नाम के जो दो ग्रंथ लिख दिए, श्रावकों के लिए सागार धर्मामृत और संतों के लिए, मुनियों के लिए अनगार धर्मामृत। अनगार माने जिनके पास घर नहीं है, यानी जो घर का त्याग कर चुके हैं, ऐसे ही संतों के लिए। तो वे सागार धर्मामृत में श्रावकों के लिए कहते हैं कि जीवन पर्यंत के लिए मध्य आदि 8 महापापों को छोड़कर जो शुद्ध बुद्धि हो गया है और जिसका उपनयन संस्कार हुआ है, ऐसा श्रावक जिन धर्म को सुनने के लिए योग्य होता है। ये सब बातें खोज खोज करके माता जी ने इसलिए रखा है, क्या जिनमें पात्रता नहीं भी है वो सुनते हैं, कोई तो सदुपयोग करते हैं और कोई दुरुपयोग भी कर लेते हैं, सोचते हैं ये तो साधुओं का धंधा है, जो भी जाए उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग बताना उनका कर्तव्य है, धंधा है। लेकिन ये नहीं समझ पाते कि इनके निमित्त से ही आज संसार बचा हुआ है, इनके ही निमित्त से आप गड्ढे में गिरने से बच रहे हो। संत न हो संसार में तो जल जावे संसार। संतों ने संसार को बचाने में, माने संसार से मोक्ष को दिलाने में अपना बड़ा भारी योगदान दिया है। इसी अयोध्या के अंदर बड़े बड़े महंतों के साथ भी जब हम लोगों की मीटिंगें हुई, सभा में आए, ज्ञानमती माता के त्याग तपस्या की बातें सुनी, तो उन्होंने कहा कि माता जी आप तो वास्तव में संत हैं। उन्होंने संत की परिभाषा की, जो संसार का अंत करने वा की ओर लगे हुए हैं, चल रहे हैं, वे संत हैं। क्या कहा? जो संसार का अंत करने के मार्ग पर लगे हुए हैं, यानी असली त्यागी हैं, असली संयमी हैं, वे संत हैं। क्योंकि ये त्याग तपस्या सुनना बड़ा कठिन होता है। लोग सोचते हैं कौन सा अजूबा है, उनसे कहो कि हमारे संत लोग हाथ में भोजन करते हैं, कहते हैं हम तो देखने आएंगे, और जब देखते हैं तो आश्चर्य में हो जाते हैं, कहते माता जी आपका हाथ में पानी लेकर के पेट कैसे भर जाता है, पानी से मन कैसे भर जाता है। अरे हम तो पानी भी इसी में पीते हैं, दूध भी इसी में पीते हैं, खाना भी इसी से खाते हैं। कोई थाली चम्मच कटोरी आपके संत नहीं लेते ना। दिगंबर जैन मुनि और आरिकाएं कोई भी थाली चम्मच से नहीं खाते, और जीवन भर उनका भाजन परित्याग हो जाता है। तो ऐसे संतों में से बड़े उच्च कोटि के संत हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी, अमृत चंद सूरी जैसे, और उनके पद के अनुयायी पंडित आशाधर जैसे भी हुए। बड़े बड़े और पंडित प्रवर हुए। आप देखो छड़ाला, पंडित दौलत राम जी की छड़ाला को घर घर में पढ़ा जाता है और उससे कुछ शिक्षाएं ली जाती हैं नरक आदि दुखों को पढ़ करके नरक गति के दुखों से बचने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए कहा कि जो इन आठ पापों को, आठ प्रकार की अभक्ष वस्तुओं को छोड़ करके जिनके निमित्त से आठ प्रकार का हमसे पाप हो रहा है उनको छोड़ करके और अपनी बुद्धि को समीचीन बना लेंगे और जिनका उपनयन संस्कार हुआ, उपनयन माने जनेऊ संस्कार, जनेऊ संस्कार आज लोग कह देते हैं ये जैनियों का चिन्ह नहीं है, जैन का चिन्ह है। जैसे हमारा चिन्ह है मयूर पंख की पिच्छी का, अगर इसको नहीं रखें तो आप हमें संत नहीं मानोगे, आप माता जी नहीं कहोगे, आप बहन जी जरूर कह दोगे। तो मुनि आरिका छुल्लक छुल्लिका का ये चिन्ह है, उसी प्रकार से जैन श्रावक का चिन्ह, पुरुष का चिन्ह होता है उपनयन धारण करना, जनेऊ धारण करना उसके अपने, यही बस। लोग डरने लगते हैं हम जनेऊ कैसे लेंगे, केवल इतना ही नियम होता है आप अष्ट मूल गुण का पालन करें और अष्ट मूल गुण का पालन करने वाला व्यक्ति श्रावक कहलाता है। और उपनयन संस्कार जिनका हो चुका है ऐसे श्रावक जिन धर्म को सुनने के योग्य होते हैं, जो लोग इसकी उपयोगिता समझ लेते हैं तो छोटी उम्र में ही उपनयन संस्कार करते। अभी पिछले दिनों ही 2 साल पहले आचार्य विद्यासागर जी ने भी उपनयन संस्कार किया, तमाम बच्चों को जनेऊ पहनाई, तमाम बच्चों के मस्तक पर उन्होंने संस्कार किया। ज्ञानमती माता जी के पास में, राजधानी दिल्ली से आए बच्चे, उन्होंने हमारे संगपति जी का देवता है नाती, उनकी बेटी का बेटा दिव्यांश आया 7.5 साल की उम्र में ही, 7.5 साल की उम्र में बच्चे जनेऊ के पात्र हो जाते हैं, क्योंकि 9 महीने गर्भ के भी लेते हैं तो मिला करके 8 साल के हो जाते हैं। और ऐसे 8 साल के बच्चे अभिषेक करने के और आहार देने के पात्र भी होते हैं। उन्हें आ करके जनेऊ लिया, उसके नियम समझे और वो बच्चा आज तक कोई चीज अभक्ष वस्तु ग्रहण नहीं करता। तो भव्यात्माओं, प्रवचन निर्देशिका के माध्यम से आपको पहले श्रावक धर्म के पालन का ये जो संस्कार या शिक्षा जो प्राप्त हो रही है उसको ग्रहण करके और फिर आगे और भी ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तो आपके हृदय के अंदर वो चीज भरती चली जाएगी। जब तक अभक्ष भक्षण करते हैं तो मन तामसी प्रवृत्ति का रहेगा, मन के अंदर कोमलता करुणा दया नहीं आ सकती है और फिर आचार्यों के वचन भी उतने उपयोगी नहीं होंगे। इसलिए वचनों को उपयोगी बनाने के लिए, उन वचनों को धारण करके और उनके अनुरूप आचरण करने के लिए अपने के को योग्य बनाना ये अत्यधिक आवश्यक है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना।